पीछे पीछे क्यों बैठते हैं? डर डर लगता है पकड़ने जब मैं छोटा था तो मुझे कई लोगों ने बोला कि इस कौन वाले पकड़ लेते हैं तो एक बार मैं बेंगलोर में था, तो करीब 12:30 पौने का टाइम था, मंदिर बंद हो रहा था, तो मैंने दर्शन किए भगवान के, तो मैं परिक्रमा लेने के लिए गया। तो जैसे ही मैं पीछे गया तो दो लाल कपड़ों में ब्रह्मचारी आ रहे थे। मैंने कहा भैया हो गया काम, पकड़ लेंगे ये कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हाँ हरे कृष्णा बोला चले गए। तो आप लोग डरने की ऐसी जरूरत नहीं, सबसे पीछे अगर ये तो बाय चांस स्पीकर रखे हुए हैं, अगर ये स्पीकर भी नहीं रखे हो तो आप लोगों पीछे चले नहीं। जो गंभीर विद्यार्थी है वो आगे बैठते पीछे बैठते हैं। हाँ सो आप सोच लो आप कैसे विद्यार्थी हो। आगे बैठना चाहिए, शिष्टाचार भी यही है कि आप आगे बैठेंगे जो बाद में आ रहा है आपके पीछे बैठ जाएगा, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगी। आप पीछे बैठते हो बाद में आने वाला आगे आता है, वो सारा डिस्टरबेंस होती है सारे जगह। एक बार की बात है कि हरे कृष्णा, आइए आइए, कहाँ से पधारे आप? हाँ आइए, आपका स्वागत है आपका। थोड़ा आगे आ जाओ आप, उनको जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। एक बार नारद मुनि जो हैं वो, उन्होंने कहा चलो इंद्र से मिल के आते हैं। तो इंद्र से मिलने गए तो पता चला कि इंद्र जो है वो, जो उसका शाही बगीचा है, क्या नाम है शाही बगीचे का इंद्र के? नंदन कानन है ना, बड़ा पारिजात पुष्प है और बहुत ही सुगंधित बगीचा है वो। तो ये कुर्सी दे दीजिए मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, वो कुर्सी वहाँ से ले लो। हाँ नहीं, आप प्लीज कुर्सी पे विराजमान होइए। नारद जी गए इंद्र के पास नंदन कानन में, तो इंद्र ने खड़े होके सम्मान किया नारद मुनि का। सारी अप्सराएं थी आसपास, सबने नारद जी का बड़ा सम्मान किया। पता नहीं इंद्र के मन में क्या बात आई, इंद्र ने पूछा कि नारद जी आपको कौन सी अप्सरा सबसे अच्छी लगती है? कोई प्रश्न नहीं है पूछने वाला साधु से, लेकिन वो पूछ लिया इंद्र ने। तो नारद जी पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, सुंदरता जो है वो नृत्य से आती है। अगर अच्छा कोई नृत्य कर सकता है, अच्छा गा सकता है, तो वो सुंदर है। सिर्फ शारीरिक सुंदरता, अगर कोई शारीरिक रूप से सुंदर हो, अच्छा नृत्य नहीं आता हो, कुछ गा नहीं सकते हो अच्छे से, तो बड़ा अजीब सा लगता है वो। तो आपस में फैसला कर लो कौन सबसे अच्छा नृत्य करता है, वही जो है श्रेष्ठ है। वो सारी अप्सराएं आपस में लड़ना शुरू हो गई। मेनका ने बोला मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, हाँ उर्वशी इत्यादि, रहने दो प्रभु। हाँ तो कई सारी आपस में लड़ती रहीं, फैसला नहीं हो पाया। तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं आप छोड़ो, आप ये बताओ कि ये अप्सराएं नहीं बता पाएंगी, आप ही बताइए कि आपको सबसे श्रेष्ठ कौन सी लग रही है अप्सरा। सुनारद जी ने कहा कि ऐसा है, अगर पास ही के पर्वत पे दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो जो दुर्वासा ऋषि को का मन मोहित कर ले वही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा जी, ये सुनते ही सारी अप्सराएं जो हैं थर थर कांपना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये तो दुर्वासा ऋषि के सामने जाने का मतलब है भस्म कर देंगे वो, क्रोध में आ गए। तो सबने बोला हम नहीं जाते, लेकिन एक अप्सरा थी उसका नाम था वपू। ये सारा वृतांत मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। सो वपू नाम की अप्सरा थी, उसने कहा मैं दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग कर दूंगी। तो गई जहां पे तपस्या कर रहे थे वो, और दुर्वासा मुनि की तपस्या का इतना प्रभाव था कि जो वहां के हिंसक जानवर थे उस जगह के, वो भी सारे शांति से रहते थे, इतना प्रभाव था। आप लोग आगे क्यों नहीं आ जाते, इतना पीछे। हाँ सो उसने वपु ने क्या किया कि दुर्वासा मुनि से थोड़ी सी दूर जाकर उसने एक पक्षी की, कोयल की आवाज में उसने गाना शुरू कर दिया। उसने तो जब वो गा रही थी तो दुर्वासा मुनि की तपस्या जो ध्यान भंग हो गया। सो उसने देखो यही होता है, अगर आप सब पहले ही आके बैठे होते तो आते आराम से पीछे बैठ जाते। हाँ तो दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध आया कि तपस्या मेरे ध्यान भंग कर दिया। तो बाहर निकल के देखा तो वपु नाम की अप्सरा थी, तो बड़ा गुस्सा आया उनको। उन्होंने बोला कि तुम ये जो पक्षी के आवाज में गा रही हो, जाओ पक्षी बन जाओ। अच्छा जी, और तुम्हारे चार पुत्र होंगे तुम्हारे, और तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। 16 वर्ष तक ऐसी तुम्हारा जीवन बीतेगा, उसके बाद फिर जो है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो तुम वापिस अप्सरा बन जाओगे। सो वो वपु नाम की अप्सरा पक्षी बन गई, पक्षी के रूप में उसने जन्म लिया। और जब वो बड़ी हुई तो उसका किसी पक्षी से विवाह कर दिया उसके पिता ने, तो गर्भवती हो गई वो। तो एक बार उड़ती हुई जा रही थी तो महाभारत के युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, वहीं पहुंच गई वो, बिल्कुल चारों तरफ तीर चल रहे हैं और युद्ध मैदान में पहुंच गई। तो पता नहीं कैसे पहुंच गई वहां पर, युद्ध के मैदान में पहुंची तो एक तीर कहीं से आया सनसनाता हुआ और उसके पेट में धस गया, नीचे गिर गई। और जैसे नीचे गिरी उसके बच्चे, उसके जो है गर्भ में जो बच्चे थे वो अंडे बाहर निकल आए, चार अंडे थे, बाहर निकल के लुढ़कना शुरू हुआ, वो मर गई और वापस अपना पहुंच गई। वो जो चार अंडे हैं वो लुढ़क रहे थे, छोटे छोटे चिड़िया के अंडे कितने होंगे नहीं, लेकिन फूटे नहीं। हाँ फूटे नहीं वो अंडे। तो इतने में एक तीर आया, एक हाथी की घंटी पे लगा और वो घंटी नीचे गिरी, जो घंटी नीचे गिरी तो चारों अंडों के ऊपर गिर गई, ढक लिया चारों अंडों को। अब चारों अंडे ढक गए तो अब रक्षा हो गई उनकी, नहीं सारे मरने से बच गए, तो महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। तो सब शांत हो गए, भीष्म पितामह लेटे हुए हैं शरशैया पर, तीरों की शैया पर। तो वहां पर शमिक ऋषि आए अपने पुत्र के साथ। शमिक ऋषि कौन है? श्रृंगी ऋषि के पिता। हाँ, और श्रृंगी कौन है? और जिसने श्राप दिया था परीक्षित महाराज को, है ना। तो शमिक ऋषि पता है आपको, या हम ऐसे ही फारसी बोल रहे हैं? वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, वो भागवतम सुना है नाम आपने? भागवतम क्या है? भागवतम, भागवतम किसने किसको सुनाई थी? हाँ, किसने सुनाई थी, किसको पता? हाथ खड़ा करो। हाँ, किसको सुनाई थी? परीक्षित महाराज को, है ना। वो जो 7 दिन तक सुनाई थी, है ना। तो परीक्षित महाराज वो भागवतम सुनने बैठे क्यों थे? सब राजपाट छोड़ के अचानक? हाँ, वो श्राप मिला था ना कि वो श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी एक लड़का था शमिक ऋषि का पुत्र, तो उसने श्राप दिया था कि जाओ 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सांप काट लेगा तुम्हें। तो वही शमिक ऋषि वहां पर पहुंचे अपने पुत्र के साथ में। हाँ, अभी परीक्षित महाराज का जन्म नहीं हुआ था अभी, या हो चुका था? हाँ, अभी जन्म नहीं हुआ था। सो शमिक ऋषि, चारों तरफ शांति थी, तो शमिक ऋषि को जो है वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आई बहुत धीरे से। तो उन्होंने देखा कहाँ से आ रही है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, तो घंटी उठाई तो 4 पक्षी निकल आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 पक्षी हैं कुछ विलक्षण हैं, ये मतलब साधारण नहीं है। सो वो चारों जो पक्षी हैं उनको, वो चारों पक्षियों को उन्होंने कहा कि चलो आप इनको जो है आश्रम में इनको संभाल के रखो। देखो विधि का विधान। हाँ, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, करोड़ों लोग मर गए। हाँ, लेकिन ये 4 छोटे से अंडे थे ये नहीं फूटे। हाँ, और बच्चे पैदा हो गए और वो चिड़िया के बच्चे भी सुरक्षित रहे, कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो जरूर ये विलक्षण है ये। तो उनको लेके गए अपने साथ में और अपने आश्रम में उनको अच्छे से उनकी देख रेख करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने पूछा एक दिन शमिक ऋषि ने कि भाई तुम ये पक्षी कैसे बन गए, मतलब क्या कारण है? हाँ, ये तुम कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं, साधारण जीव नहीं हो, कोई पुण्यात्मा हो, लेकिन ये पक्षी के शरीर में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा वो एक बार हरिश्चंद्र का नाम किस किस ने सुना हुआ है? हाँ, क्या खासियत थी हरिश्चंद्र में? सत्यवादी थे, है ना। हरिश्चंद्र के ऊपर पिक्चर नहीं बनाता आजकल कोई, सुल्तान सुल्तान पिक्चर चल रही है, हरिश्चंद्र पे नहीं बनाते हैं। बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट में बनी हुई है हरिश्चंद्र पर। तो सत्यवादिता के लिए मशहूर थे, तो उन्होंने विश्वामित्र को उन्होंने वचन दे दिया था कि आप जो भी मांगोगे मैं सब दे दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा सारा राजपाट मुझे दे दो और मैं तुम्हारे लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सारा राजपाट दे दिया उन्होंने हंसी खुशी। तो राजपाट लेने के बाद विश्वामित्र ने कहा वो जो अश्वमेध यज्ञ है उसकी दक्षिणा तो दो। नहीं, तो उन्होंने कहा कहाँ से दूँ, सब कुछ तो मैंने दे दिया आपको। तो कहा फिर तो तुम झूठे हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको दक्षिणा ला के दूंगा। तो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में राजमहल छोड़ के जा रहे थे वो, तो धीरे धीरे चल रहे थे, भारी मन से चल रहे थे। तो विश्वामित्र ने अपनी लाठी से उसकी पत्नी को पीटा, हरिश्चंद्र की पत्नी को। हाँ, तो हरिश्चंद्र ने बोला नहीं नहीं माफ कर दीजिए, हम जा रहे हैं, हम तेजी से चलेंगे। तो इतने में विश्व देव थे 4, उन्होंने विश्वामित्र को बोला आकाश मार्ग से कि ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे अत्याचार क्यों कर रहे हो, उनको क्यों मार रहे हो तुम। तो विश्वामित्र ने कहा अच्छा तुम बहुत बन रहे हो अपने आप को, चलो जाओ पृथ्वी पर गिर जाओ। श्राप दे दिया उनको चारों को कि पृथ्वी पर मृत्यु लोक में पैदा हो तुम। तो चारों ने माफी मांगी, डर गए विश्वामित्र से। तो बड़ी सारी एकदम बीच में मिक्स चल रही है स्टोरी। तो उन्होंने माफी मांगी तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है तुम चारों पैदा हो गए पृथ्वी लोक पर, लेकिन तुम जो है तुम्हारा कभी भी जो है ना तुम्हारा विवाह होगा ना ही तुम्हारी आपस में कभी लड़ाई होगी, तुम ज़्यादा समय नहीं रहोगे, तो वापस तुम चले जाओगे। हाँ तो ऐसा जो तो वो जो विश्वदेव हैं, वो विश्वदेव जो हैं वो पांडवों के पांच पुत्र बने, और पांच पुत्र जो हैं जिनकी बाद में अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी, है ना। सो इस तरह से जब वो पक्षी बता रहे थे शमिक ऋषि को, तो उन्होंने फिर अपने बारे में भी बताया कि हम ऐसे जो हैं इस प्रकार से हमारा जन्म हुआ, पिछले जन्म में हम ये थे, हमने ऐसा ऐसा किया, तो हमें जो है हमें जो वो चार जो पक्षी थे वो चार पक्षी जो हैं वो एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि, उनके पुत्र थे और अपने पिता की सेवा करते रहते थे वो। तो एक बार इंद्र जो है उनकी सेवा से जो ऋषि की तपस्या से घबरा गया, उसने कहा मेरा राज ही ले लेगा ये। तो एक पक्षी के रूप में आया इंद्र और उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। सो वो ऋषि ने कहा आप जो भी खाना चाहेंगे मैं आपको अर्पित करूंगा। तो उन्होंने बोला देखो मैं तो मांस खाता हूँ, मुझे तो आदमी का मांस खिलाओ। तो ऋषि ने अपने चारों बच्चों को बुलाया और उसने बोला कि देखो मैंने वचन दिया है, तो तुम अपने शरीर का मांस इस पक्षी को अर्पित कर दो। तो चारों ने बोला नहीं नहीं एक जीव को की रक्षा करने के लिए आप चार जीवों की का बलिदान दे रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें तो ये शरीर मिला है कि हम अच्छे से तपस्या करें। तो ऋषि ने कहा तुम मेरे वचन का पालन नहीं करना चाह रहे, तुम इतने नीच हो, जाओ पक्षी बन जाओ। तो पक्षी बन गए वो चारों। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, तब इंद्र भी घबरा गया, इंद्र ने भी अपना स्वरूप प्रकट किया कि भाई मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी। सो चार पक्षी जो हैं वो चार जो बच्चे थे उन्होंने माफ़ी मांगी अपने पिता से। तो पिता ने कहा कि ठीक है तुम्हें पुनर्जन्म का याद रहेगा और तुम पक्षी के शरीर में भी रहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लोगे, और जब तुम वो शरीर छोड़ोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सो कहने का भाव ये है कि हम ये सारी जो कथाएं चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि पांडवों के जो पांच पुत्र हैं वो भी पैदा हुए, और भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन ये जो द्रौपदी के पांच पुत्र हैं इस तरह से उनकी हत्या हो गई, ऐसे अनाथ होते हैं वो, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, है ना। और जो ये चार बालक थे ऋषि पुत्र थे, पक्षी का शरीर लेना पड़ा, हरिश्चंद्र को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, आप देखो कि हर व्यक्ति अपने भाग्य से बंधा हुआ है, हर व्यक्ति जो है अपने कर्म फल भोगता जा रहा है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके जितना भी धन संपत्ति है उसके परिवार वाले आपस में बांट लेते हैं, लेकिन कर्म कोई नहीं बांटता। कर्म ऐसी वस्तु है जिसको जीव अपने साथ आगे लेके जाता है और उसके अनुसार फल भोगता रहता है, अच्छा और बुरा, मीठा फल और कड़वा फल। सो क्या मीठा फल और कड़वा फल खाते रहना ही जीवन का लक्ष्य है? मीठा फल और कड़वा फल खाते रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य, आप लोग भी अपने घरों में रह रहे हो, अनेक प्रकार के रोज सुख और दुख का अनुभव कर रहे हो, हाँ, लेकिन इस सुख और दुख का अनुभव करते रहना, कोई परेशानी आ गई उसका समाधान ढूंढते रहना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये काम भी करने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि अगर हम यही करते रहेंगे, सिर्फ रोज उठे और घर के काम में लगे रहे, पैसा कमाने में लगे रहे, दुनियादारी निभाते रहे, तो जिस प्रकार इस जन्म में हमें एक माता के गर्भ में आश्रय लेना पड़ा, हमें दोबारा बारंबार किसी ना किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। सो हम जो भाग्यवश जो हमें सुख और दुख मिल रहा है, उसको बहुत ही उदासीन भाव से, निरपेक्ष भाव से उसको हमें सहन करना चाहिए। दुख को सहन करना आसान है, सुख को सहन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि दुख जब आता है, जब विपत्ति आती है, तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, लेकिन जब सुख आता है तो सुख के साथ में, सुविधाओं के साथ में अभिमान भी आ जाता है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति एकाएक अमीर बन जाए तो कहते हैं ना, दिमाग घूम गया, इसका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच गया, बात सीधे मुंह बात नहीं करता, नहीं ऐसा बोलते हैं नहीं। तो दुख को सहने की अपेक्षा सुख को सहना ज्यादा कठिन है। जो व्यक्ति सुख को निरपेक्ष भाव से अगर सह सकता है, और दुख को निरपेक्ष भाव से सह सकता है, वही व्यक्ति बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति कर सकता है। जो जो सुख और दुख से विचलित है, जो सुख और दुख से प्रभावित है, वो भगवान का ध्यान भी करने बैठेगा तो हाथ में माला होगी, मुंह से बोल रहा होगा हरे कृष्णा, लेकिन मन कहाँ होगा उसका? मन उसका किसी ऐसी वस्तु में ऐसी वस्तु में होगा जिसमें उसकी आसक्ति है, जिसके बारे में सोचना उसको बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो वस्तु उसको परेशान करे चाहे उसको सुख पहुंचाए। जैसे सपोज किसी किसी के जो हस्बैंड है वो लेट हो गए घर आने में, काम पे गए, ऑफिस गए, दुकान पे गए, लेट हो गए आने में, बारिश पड़ना शुरू हो गई, नहीं, अब वो उसके पास थोड़ा समय है, चलो उसने जप करना शुरू किया, तो जप कर रही है स्त्री, लेकिन मन उसका कहाँ पे होगा? आए नहीं अभी तक, फोन भी नहीं उठा रहे, नहीं, दिमाग में चलता रहता है, नहीं चलता रहता। सो उस चिंता से कुछ होगा नहीं, वो चिंता से क्या होगा? कुछ होगा उस चिंता से? जो स्त्री चिंता कर रही है उस चिंता से कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा ये होगा कि अगर वो स्त्री भगवान का नाम ले और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान आप रक्षा कीजिए। जैसे वृंदावन के सारे जितने भी ब्रजवासी हैं, उनको कोई भी विपत्ति आएगी तो सीधा कृष्ण के पास जाएंगे और बोलेंगे रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण आप महाबलशाली हो, आपकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं, आप समस्त जो है विपत्तियों से रक्षा करने में सक्षम है, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। सो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन मन जो है, मन हमें इतना दुखी करता है, हम मन को अपना सबसे प्रिय मित्र मान के जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ये मन हमें इतना दुख पहुंचा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप लेखा जोखा करने बैठो तो आपको पता चलेगा मन ने आपको इतनी यातनाएं दी हैं जितना शायद यमराज जी भी नरक में नहीं देंगे। कोई छोटी सी बात हो मन उसको बढ़ा चढ़ा कर, हाँ, लाखों करोड़ों गुना बढ़ाकर आपको पिंच चुभोता रहता है, नहीं? जैसे किसी ने पेपर दिया जो है, वो पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, तो बच्चा क्या करेगा? वो सोचता रहेगा यार पता नहीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। अरे सोचने से अभी क्या हो सकता है, नहीं आपके परेशान होने से क्या होगा, लेकिन और उसको किसी ने बोल भी दिया, माँ बाप ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया, चल ठीक है ये जो हो गया हो गया, आगे जो अगले पेपर है उसको अच्छे से दे दे, नहीं उसी के बारे में सोचता रहेगा बार। मैं जब सीए के पेपर दे रहा था तो मैं पेपर देने गया तो एक लड़का बिल्कुल, जब पेपर से लोग आधा घंटा एक घंटा पहले इकट्ठे हो जाते हैं, लेट ना हो जाएं ये ना हो जाएं तो पहले ही पहुंच जाते हैं, तो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने देखा एक लड़का जो था वो बिल्कुल झाड़ियों की तरफ मुंह करके कोने में बैठ के पढ़ रहा था। अच्छा जी, सो घंटी बजी, सब अंदर घुसे, तो वो लड़का जो है उसको पता चला कि वो जिस चीज की पढ़ाई कर रहा था वो पेपर कल था, वो कल वाले पेपर की आज पढ़ाई कर रहा था बैठ के, वो घबरा गया, रोना शुरू कर दिया उसने। तो हमने उसको बोला भाई ये जो सीए का जो पेपर है एक दिन में तैयारी थोड़ी ना होती है, उसकी तैयारी में तो कई महीने लगते हैं, तो तुमने तैयारी कर रखी है, घबराओ मत, तुम पेपर दे पाओगे हमें पूरा भरोसा है। नहीं, घबरा गया बिल्कुल, और पेपर देने गया लेकिन आधे घंटे में उठ के चला गया, और अगले जो है तीन पेपर भी उसने ने खराब कर दिए उसने। सो अगर वो शांत मन से सोचता, जो हम सब लोग उसको कह रहे थे कि भाई तूने 1 साल तैयारी की है, 6 महीने तैयारी की है, कुछ घंटे तूने किसी और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, कौन सी आफत आ गई, पेपर दे अपना आराम से बैठ के, लेकिन मन ने उसको इतना विचलित कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो पेपर वो दे सकता था लेकिन फिर भी वो पेपर दे नहीं पाया वो, नहीं क्योंकि मन ने उसको इतना जो है इतना उसको डावाडोल कर दिया उसको। हाँ, सो ये जो मन है, ये मन हमें छोटी सी कोई बात होगी उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा के हमें परेशान करता है, और हम फिर भी इसी मन के साथ लगे रहते हैं, इसकी हर बात, हम अपने मन की हर बात सुनते रहते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भगवत गीता में पूछा भगवान कृष्ण से कि हे कृष्णा, मैं इस मन को कैसे वश में करूं, ये मन मेरे को परेशान किए जा रहा है। चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलवत प्रणम, इतना बलवान है और प्रमाथी है, जिद्दी है, जहां पे नहीं लेके जाना मैंने सोचा कि वहां नहीं मन को लगाऊंगा, और मन क्या करेगा, उसी बात पे लेके जाएगा, उसी जगह पर खींच के लेके जाएगा कि भैया तुमने मना किया था वहीं लेके जाऊंगा, क्या करूं। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला, अभ्यासेन, हाँ अभ्यासेन और वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य से तुम अपने मन को वशीभूत कर सकते हो, अपने मन को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। तो जब भी आप जप करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, मन आपको कहीं पे लेके जा रहा है, वो मन को, मन वहां गया उसमें परेशानी नहीं है, मन का स्वभाव है भागना, लेकिन जब मन भाग के कहीं चला गया आपको जब पता चला, कई बार तो पता ही नहीं चलता, मन खिचड़ी बनाए जाएगा, हम वो साथ में वो खिचड़ी बना रहे हैं बीरबल की, पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन चलो जब तक पता नहीं चला क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको अंदाजा हुआ कि यार आप तो कहीं और ही पहुंच गए, भगवान का भजन करने बैठे थे कहीं और दिशा में पहुंच गए, तो कोई बात नहीं, मन को पकड़ो वापस, हरे कृष्णा मंत्र में वापस लेके आओ, फिर भाग जाए फिर उसको पकड़ के लेके आओ, और फिर आप सोचो कि ये मन जा कहाँ रहा है, मन वही जाएगा जहां पर मन की आसक्ति है, जहां पर मन की आसक्ति है मन वही जाएगा, मन पड़ोसी के बच्चे में क्यों नहीं जाता, मन अपने बच्चे में जाता है, अपने बच्चे में इसलिए जाता है क्योंकि अपने बच्चे से आसक्ति है, कोई पड़ोस का बच्चा है, कोई दूसरे मोहल्ले का बच्चा, उसमें मन क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उससे आसक्ति नहीं है। तो अगर हम इस आसक्ति को अगर हम इस आसक्ति को काटने का प्रयास करें। और कुंती महारानी ने भी भगवान कृष्ण को बोला कि हे कृष्णा, ये जो पारिवारिक संबंध है ये इतने इतने कठोर हैं, इतने जटिल हैं और बांधे हुए हैं, ये हम मैं इन पारिवारिक बंधनों से अलग होना चाह रही हूँ लेकिन बहुत ही कठिन है, मैं कर नहीं पा रही, तो आप कृपा करें कि आप मुझे ऐसी शक्ति दें, ऐसी बुद्धि दें कि मैं पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। जो आसक्ति है, देखो आसक्ति से मुक्त होना और जिम्मेदारी नहीं निभाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आसक्ति बिना आसक्ति रखे अच्छे से काम करना अलग बात है और वैराग्य के नाम पे अपनी जिम्मेदारी से भागना अलग बात है। जिम्मेदारी से भागने की सलाह कोई किसी को नहीं देता। जरूरत है कि हम घर में ही रहते हुए हम आसक्ति से बचें और आसक्ति से बचते हुए हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा किस प्रकार संभव है? तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे अपने जो भी आप काम कर रहे हो सब काम मुझे अर्पित करते चलो, सारे काम मुझे अर्पित करके चलो, जो भी काम कर रहे हो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जब आप ऐसे करोगे, जब आप हर काम हर कार्य का फल मुझे समर्पित करके चलोगे, जो भी कार्य कर रहे हो ये सोच के चलोगे कि मैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, तो आप अपने घर में इसी प्रकार आप समाज में रह सकते हो जैसे पद्म पत्रम इवाम्भसा, जैसे कि जल में पद्म पत्रम कमल का फूल रहता है, कमल का फूल जल में है लेकिन जल से स्पर्श नहीं करता, जल में है, जल ही में रह रहा है, जल से ही उगा है लेकिन जल से उसका कुछ संबंध नहीं है। जल कमल के जो पंखुड़ी पे गिरेगा तो उसको गीला नहीं करता, बह जाता है। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपने जितने भी कार्य हैं हमें भगवान को समर्पित करके करने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हरिश्चंद्र वपु जो अप्सरा का अभी हमने जो वर्णन किया नहीं, और वो जो विश्वदेव है जो पांडवों के पुत्र बने और जिनको वध कर दिया भगवान कृष्ण की मौजूदगी में, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में मौजूद थे फिर भी उनका वध कर दिया, भगवान कृष्ण ने कितने रक्षा की पांडवों की। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडव वैसे ही खत्म हो जाते। महाभारत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर जो है कर्ण से युद्ध कर रहे थे तो कर्ण ने बहुत उनको घायल कर दिया, तो बड़े क्रोध में थे युधिष्ठिर। तो अर्जुन मिलने आया तो युधिष्ठिर महाराज इतने क्रोध में थे, उन्होंने बोला क्या गांडीव लेके घूम रहे हो तुम, क्या कर्ण को मार दिया तुमने? कह नहीं, मैं तो आपका हालचाल पूछने आया था। अरे फेंक दो इस गांडीव को, व्यर्थ है इस गांडीव को संभाल कर रखना, तुम्हारे लिए किसी काम तो आ नहीं रहा। अर्जुन को गुस्सा आ गया, अर्जुन ने कहा भाई आपका वध करूंगा मैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्यों भाई वध क्यों करोगे, बोल दिया। उन्होंने अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर किसी ने भी मुझे बोला कि अपना गांडीव छोड़ दो तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो वो तलवार निकाल के आगे बढ़ा युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहा रुको रुको भैया, और भी इसका तोड़ है इसका। तो उन्होंने कहा तुम अगर कोई छोटा जो है वो अपने वरिष्ठ अपने श्रेष्ठ जो अपना ज्येष्ठ है अगर उसका अपमान कर दे तो वो भी मृत्यु के ही समान है। तो तुम जो है युधिष्ठिर का जो युधिष्ठिर महाराज का अपमान कर दो, तो उन्होंने अपमान कर दिया। क्या जरूरत थी जुआ खेलने की, सब कुछ दांव पे लगा दिया, बड़े धर्मराज बने फिरते हो, बड़ी बेइज्जती की। तो चलो कहा कि बेइज्जती की वध के समान है, बराबर हो गया। अब अर्जुन ने कहा चलो ये तो पूरा हो गया, अब मैं आत्महत्या करूंगा, मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया, मैं कैसे जीवित रह सकता, उनके सामने कैसे जाऊंगा, तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, अब क्या करोगे। तो आत्महत्या का दूसरा तरीका क्या है, कोई बता सकता है आप में से, कैसे भगवान ने बाहर निकाला इसमें से कि प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। हाँ कि अब चलो युधिष्ठिर महाराज को तो बचा लिया, अब अर्जुन को कैसे बचाएं आत्महत्या करने से, क्या बोले उसको कि वो आत्महत्या नहीं करे, बात खत्म हो जाए। नहीं, विपत्ति देखो कैसी है, और इस विपत्ति में से निकालने में एक ही व्यक्ति सक्षम है, भगवान कृष्णा। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, अपनी बड़ाई करना आत्महत्या के समान है, तुम अपनी बड़ाई करो, अपनी प्रशंसा करो, अपनी प्रशंसा करना शास्त्रों में लिखा है, अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या करने के समान है, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। तो फिर अर्जुन ने अपनी प्रशंसा की, देखो मैंने शिव जी को हराया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो उसने अपनी बढ़ाई की, उसने तो बला डली। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर थे, फिर भी भाग्य का ऐसा विधान था कि जो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं अनाथों की तरह उनकी हत्या कर दी गई अश्वत्थामा के द्वारा युद्ध खत्म होने के बाद। जो भी हमारे साथ हो रहा है अच्छा या बुरा, उसको अपने पूर्व कृत कर्मों का फल समझना चाहिए, जो कि है ही। जो आपके पूर्व जन्म के फल हैं उसको ये समझ के आराम से, उसको बहुत ही सहनशील भाव से, विनम्रता से उसको भोग लेना चाहिए, और उसको भोग के भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने परिवार में घर वालों में आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, आसक्ति को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कभी ना कभी हमें ये घर छोड़ना है, चाहे हम इच्छा से छोड़े चाहे मृत्यु के रूप में हमें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि 50 वर्ष की आयु के बाद घर छोड़ के वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ लेने का मकसद क्या है, वानप्रस्थ लेने का मकसद है कि हम घर से बाहर निकलें, जो अगली पीढ़ी है बच्चों को घर की जिम्मेदारी सौंपे, और खुद घर से आसक्ति घटाएं। जब हम बार बार तीर्थ यात्रा करेंगे, बार बार अनेक स्थानों पे जाएंगे, वृंदावन हरिद्वार मथुरा इत्यादि स्थानों पे, द्वारका, और वहाँ पर हम समय बिताएंगे, तो शुरू शुरू में घर की बहुत याद आएगी, रोज फोन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नहीं, जब हम 24 घंटे घर में नहीं बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे फिर घर की चिंता हमें कम सताएगी, और उससे इसे इसे क्या बोलते हैं, जब आपको घर की चिंता कम सताए इसको वैराग्य बोलते हैं। कोई वैराग्य ऐसा नहीं है कि शरीर पे शमशान की राख मलके वही वैराग्य है, वो नहीं है वैराग्य। वैराग्य मन का वैराग्य है, आप कितना अपने घर के बारे में सोचते हो और कितना भगवान के बारे में चिंता करते हो। अगर आप भगवान के बारे में ज्यादा चिंतन करोगे, घर की चिंता कम करोगे, तो उसे वैराग्य कहते हैं। हमें अभी से, आप ऐसा नहीं है कि 49 वर्ष 364 दिन हम घर में अच्छे से खूब मिलके रहे और सोचे चलो अगले दिन सुबह निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि हमें एक समय ऐसा आएगा कि हमें घर को छोड़ना चाहिए, हमें घर से आसक्ति को घटाना चाहिए। अगर आप आज ये बात सोचना शुरू करेंगे तो आप 50, 51, 52 साल की उम्र तक आते आते जब आपके बच्चे सेटल हो जाएंगे तो आप सोच सकते हो चलो वृंदावन जाके 15 दिन लगा के आए। आज नहीं सोच सकते हैं, सोच सकते हो आज आप लोग। आप में से कितने लोग जा सकते हैं 15 दिन के लिए वृंदावन? तुम्हारे पर तो जिम्मेदारी नहीं है ना प्रभु, अभी तुम्हारे पर जब जिम्मेदारी आएगी तब पूछेंगे। शादी हो जाएगी ना तुम्हारी? ओ ही इज मैरिड, तो पहले वाइफ से परमिशन लेके आओ। और अगर तुम वृंदावन चले गए तो अगली बस पकड़ के वाइफ भी आ जाएगी, बोले क्या कर रहे हो, और गलती हो गई। और कई बार हमें लगता है कि हम वहां जाकर रह लेंगे, लेकिन जब आप वाकई में जाओ किसी तीर्थ स्थान पर और वहां पर रहो, दो तीन दिन के बाद ही दिमाग खराब हो जाता है, हैं? घर की याद सताना शुरू कर देती है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ मार्केट गए थे पीछे से ताला लगाया कि नहीं लगाया। और कई लोग यही सोचते रहते हैं गैस तो नहीं खुली छोड़ गई, नहीं सोचते नहीं सोचते, हाँ नलका तो नहीं मैं खुला छोड़े सारा पानी बह जाएगा, अरे पूरा जीवन बह गया, हाँ पानी की चिंता कर रहे हो। सो अगर हम अभी से इस बारे में नहीं सोचेंगे, अभी से हम नहीं सोचेंगे कि जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें फल मिल रहा है, लेकिन हम इस चक्री को रोकना चाहते हैं, हम इस चक्री में फंसे नहीं रहना चाहते, हम इस चक्री से बाहर निकलना चाहते हैं। और बाहर निकलना है तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, अपने परिवार वालों से वैराग्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कथाएं आपको सुनाने का यही उद्देश्य था। आपको अगर किसी का कोई प्रश्न है तो